جنت کے طلبگار رب کو سب کچھ دینے والے ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کروایا. انہوں نے کہا اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے ہی پاس رکھ لیجئے, اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجئے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجئے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہی کیا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے, یعنی انہوں نے خریدا تھا. آج کے دور میں ایسی جیسے کوئی گاڑی خریدے بڑی سی, کوئی لینڈ کروزر, اور اس کو اللہ کے لیے وقف کر دے. فائدہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لیا, کیونکہ وہ تو جنت کے راہی تھے. اور مجھے بڑا رشک آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق پہ رضی اللہ عنہ. میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے بلال کو آزاد کروا کے ان کی ساری زندگی کی نیکیوں میں اپنا ہاتھ ڈال دیا, حصہ ڈلوا دیا. ایک ایک نیکی ابو بکر کے کھاتے میں جائے گی, سبب بنے دوسرے کو اللہ کی طرف لانے میں, دوسرے کے اسلام کی طرف. یاد رکھیے کہ جنت کے طلبگاروں کو ایک اور قیمت بھی چکانی پڑتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اپنے پیٹ کو ان لقموں سے بچانا پڑتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ہوں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا, اور ابو بکر صدیق اپنی ضرورت میں استعمال کرتے تھے. ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور ابو بکر صدیق نے بھی اس میں سے کھا لیا. پھر غلام نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسی کمائی ہے؟ آپ نے پوچھا کیسی ہے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی, یعنی کہانت ہوتی نا اسٹرانومی, جیسے ستاروں کو دے کے نجوم والی کیفیت, لوگ جو پامسٹری ٹائپ کی چیز. حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی, میں نے صرف اسے دھوکہ دیا تھا, لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت مجھ کو یہ چیز دی تھی. آپ کھا بھی چکے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں کہہ کر کے نکال ڈالی. اللہ اکبر. شبے میں تھا, چلا گیا, کھانے سے پہلے نہیں پتا تھا کیا ہے, بعد میں پتا چلا, کہہ کر دی. کیوں؟ کہ پیٹ ہو صدیق اکبر کا اور لکمے جائیں رب کی نافرمانی کے, یہ ممکن نہیں. یہی لوگ ہوتے ہیں جو جنت کی طلب رکھنے میں سچے تھے. ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں, کیا واقعی ہم نے اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کو جنت کی طلب رکھی, ان کے دلوں میں تڑپ رکھی؟ اس دور کا تو بچہ بچہ جنت کا متمنی تھا اور چاہتا تھا ہر اس کو راستے سے ہٹا دیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے. ابو جہل کا نام تو آپ نے بھی سنا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, اللہ کا دشمن. کیا آپ نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے اور یہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ شدید ہے؟ اس کو کس نے مارا؟ دو بچوں نے, معوز اور معاذ, افرا کے بیٹے تھے. قسمیں کھا کے آئے تھے کہ میں ان کو ماروں گا, وہ کہتا تھا میں ماروں گا. وہ کون سی مائیں تھیں جو ایسی تربیت کرتی تھیں؟ آج اس امت کو ایسی ہی ماؤں کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے جنت کی تمنا نہ رکھی تو نہ جانے کل کے دور میں تو لوگ شاید اس جنت کا انکار ہی نہ کرنے لگ جائیں. ایک صحابی تھے, جنگ کا میدان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر میں آج مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے گا. پھر انہوں نے کھجوریں پھینک دیں جو ان کے ہاتھ میں تھیں اور میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں کھجوریں کھانے میں اپنا وقت لگاؤں اور جنت میری منتظر ہے. ایسے ہی لوگ تھے کہ مست ہوں مدباسا و در راؤ. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سارے غریب لوگ ہوتے تھے. نہیں, میں آپ کو ایک بہت دولت مند شخص کی کہانی بھی سنانا چاہتی ہوں सही बुखारी ही की रिवायत है जिसमें इनका वाक्य आता है, और मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बता सकती हूँ। मुसब बिन उमैर लाडले थे, दौलतमंद थे, कुफर पे थे। जब अपने घर से पहन ओढ़ के निकलते सवारी पे बैठ के तो लोग इनको देखते, लेकिन जब इनकी मौत आई तो हाल क्या था कि सर पे कफन डालते तो पाँव खुलने लगते, पाँव छुपाते तो सर खुल जाता। फिर आपने फरमाया कि सर को छुपा दो और पाँव पर असहर घास डाल दो। दुनिया में पसंदीदा चीज़ों को अल्लाह के दीन के लिए छोड़ने वाले, अल्लाह उनकी कदरदानियाँ करता है। क़यामत तक के लिए इनके वाक़यात को इंसानियत की हिदायत का ज़रिया बना देता है। तो बात क्या है कि जन्नत उसको मिलेगी जो कोशिश करेगा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। जन्नत मिलेगी जब जन्नत पाएंगे, और जिसको जन्नत खुली आँखों से दिखती है ना, तो मौत के वक्त तीर भी लगते हैं ना, तो आवाज़ यही निकलती है, फुस्तुवा रब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया रब्बे काबा की कसम। ऐसे भी एक साथी थे कि दुश्मनों ने बड़ी अजियत से मारा, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जो मौत आती है वो असल में उसकी मुलाकात की तैयारी होती है, उस जन्नत के दरवाज़े खुलते हैं। ऐसे ही लोग फिर कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। हमारी आज कामयाबियों के क्या मेयार है? हम आज किस चीज़ को कामयाबी कहते हैं? हम आज इस दुनिया की ऐश और इशरत को सब कुछ कहने वाले, अल्लाह के नबी सल्लम उसी मौके पे जब ये आयतें नाजिल होती हैं खंदक खो रहे हैं अपने साथियों के साथ। सख्त सर्दी है, सुबह के वक्त में खंदक खुद रही है। इनके पास ग़ुलाम नहीं थे खुद काम करते। अल्लाह के नबी सल्लम ने जब अपने साथियों को इस तरह काम करते देखा तो आपने उनके लिए दुआ की, उनकी हिम्मत बंधाई, अल्लाहुम्मा इन्नल ऐशा ऐशुल आखिरा। ए अल्लाह, ऐश ज़िंदगी तो बस आखरत की ज़िंदगी है। फ़ग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा, ए अल्लाह अंसार और महाजरीन की मग़फ़रत फरमा। अपने जोश दिलाया, कितना प्यारा तरीका आता था आपको काम कराने का। काम करने वालों की हिम्मतें बनाते हैं। फिर उन्होंने भी जवाब में दुआ दी, अपने इकरार को दोहराया कि नहनुल्लज़ीन बायअू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल जिहादी मा बकीना अबदा। हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद करने के लिए बैत की जब तक हमारी जान में जान है। अल्लाह के नबी सल्लम ऐसे लोग नहीं थे कि जो बैठ के सिर्फ तस्बीह के ऊपर अल्लाहू के नारे लगाने वाले या तस्बीहात पढ़ के सोचें कि जन्नत मिल जाएगी। अमली जन्नत चाहिए थी उन लोगों को। गज़वे खंदक ही के मौके पे मट्टी को उठा उठा के लोग अपनी कमरों पे रख रहे थे, सरों पे रख रहे थे। आपका अपना पेट मुबारक मट्टी से अटा हुआ था। ऐसे लोग ही अम हसिब तुमन तदखुलुल जन्ना, इस सवाल का जवाब देंगे कि अल्लाह ताला हमने ये नहीं सोचा था, हमने तो कुर्बानियां करके दिखा दी कि हमें जो जन्नत चाहिए वो पाने के लिए हम हर तरह की कुर्बानी करने को तैयार हैं। कितनी खुशी से दीन का काम करते थे। हम तो मरते दम तक इसी काम पे रहेंगे। सही बुखारी की एक रिवायत है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, कहते हैं इतनी भूख थी उस वक्त भी, एक तो भूख, एक सर्दी, एक खौफ, टेंशन, दुश्मन आने वाला है, आज तो लगता है कि इस्लाम का नाम मिट जाएगा। सारे गिरोह मिल के आए थे, एक नहीं सारी सुपर पावर्स मिल के आ गई थी, आओ आज इनको ख़त्म कर देते हैं। और वो नखत्ते लोग खंदकें खोद रहे हैं और भूख है, खाना नहीं, किसी को फिक्र नहीं कि लाओ कुछ खाना पका लूँ। मिशन था ना, काम से मोहब्बत थी। भूख सहनी पड़ती है काम करने वालों को। याद रखिए कि जन्नत को पाने वाले नॉर्मल जिंदगी बसर करने वाले नहीं होते, आराम पसंद नहीं होते। हजरत अनस कहते हैं कि एक शख्स मुट्ठी भर जौ ले आता और लोग उसी को थोड़ा थोड़ा खा लेते। ऐसा तेल ले आते जिसका जायका बदल चुका होता, उसको मिला के उन जौ के अंदर खिला दिया जाता। वो भूखे होते थे, ये खाना इनके हलक में चिपक जाता, इसमें बदबू होती थी, लेकिन वो खा लेते थे। उनको भी भूख लगती थी, उनको भी तकलीफ़ होती होगी, उनकी भी ज़ुबान टेस्ट कॉन्शियस थी, उनका भी दिल करता था हर दिन नई चीज़ मिले। लेकिन एक ही लगन है ना कि जन्नत चाहिए, हम इस जन्नत को पाना चाहते हैं। सोच का फ़र्क है सिर्फ, अमल खुद बहुत बदल जाते हैं। जब दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं तो इसके अमल करते हैं ना, कोई आसानी से थोड़ी मिल जाती है ये दुनिया भी, कितनी मेहनत करते हैं तो मिलती है। लेकिन जिसकी सोच बदली, उसने ये नहीं सोचा कि मैं जो करूं यही छोड़ जाऊं, कल मर गई कुछ भी नहीं साथ, चलो मैं वहां घर बनाती हूं जहां मेरे साथ रहेगा। दियारे गैर में घर क्यों नहीं बनाते, क्यों कि पता नहीं कब जाना पड़े, चलो जहां रहना है वहीं बनाएंगे। असल बात है सोच बदलने की। सही बुखारी की एक रिवायत अबू मूसा अलैशरी से कहते हैं कि हम नबी सल्लम के साथ एक गजवे के लिए निकले, हम 6 साथी थे और हम सब के लिए सिर्फ एक ऊंट था जिस पर बारी बारी हम सवार होते थे। यानी पैदल तवील और पुर मुशक्कत सफ़र की वजह से हमारे पाँव फट गए, मेरे भी पाँव फट गए थे, नाखून भी झड़ गए। चुनाचे हम कदमों पर कपड़े की पट्टी बांध कर चल रहे होते, पट्टियाँ बांधते, बैंडेज लगा लेते, लेकिन रुके नहीं, उज़र नहीं दिया, सॉरी हम नहीं कर सकते, अब हालात साजगार नहीं रहे, मुमकिन नहीं रहा, चलो करना है जो करें, हम जा रहे हैं पीछे। नहीं, मिशन मकसद वो जन्नत दिखती थी आंखों के सामने। इन पट्टियों के बांधने की वजह से उस गजवे का नाम गजवा जातु रिका पड़ा, पट्टियों वाली जंग, बैंडेज वाली जंग। अल्लाह अकबर, क्या ख्याल है, अब भी कोई हम में से कहेगा कि आजकल मुसलमानों के हालात ख़राब हैं, आजमाए जा रहे हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, छोड़ो। मुझे तो ऐसे लगता है कि शर्म आती है हम अगर अपना मुवाजना करें उन लोगों के साथ। अल्लाह ताला का इरादा यही है कि हम सब उस घर में जाएं जो उसने हम सब के लिए बसाया। मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में ही फ़ायदा होगा। अब देखिए कि बच्चा है ना, हर बात से भागता है, नहाने से भागेगा, खाने से भागेगा, माँ ज़बरदस्ती करवाती है, क्यों कि उसको पता है ये इसके हक़ में अच्छा है। इसी तरह अल्लाह ताला भी बंदे को बाज़ दफ़ा मुश्किल हालात में डालता है, पियो कड़वी दवा, सेहत होगी इससे। बाज़ दफ़ा दुआएं करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, क्यों कि तुम्हें जन्नत देना चाहता हूँ। बाज़ दफ़ा आजमाइशों में डाल देता है, तस्किया करता है इंसान का। दो तरह की तकलीफ़ें होती हैं जिससे इंसान को आजमाया जाता है, क्योंकि इसमें मस्सत हमुल बासाओ वद्दर्राओ की बात हुई ना। एक तो यह कि दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आता है, इंसान नशुकरा बन जाता है, रजू नहीं करता अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह ताला मुश्किलें डालता है ताकि पलट आओ, इसी दुनिया में आ जाओ। और बस तकलीफ़ें आती हैं दर्जात की बुलंदी के लिए, कोई बंदा रब को अच्छा लगने लगता है, फिर अल्लाह ताला उसके दर्जे और बुलंद करना चाहता है, फिर उस पर मुश्किलें डालता है। तो पहली तकलीफ़ों की किस्म अपने गुनाहों की वजह से आती है, नाशुक्रियों की वजह से आती है। अल्लाह ताला मुश्किलें डालता है ताकि आ जाओ मेरी तरफ, पलट आओ, मना लो मुझे। और दूसरी ये है कि और दर्जे बुलंद करो, पहले ही अच्छे थे अब और अच्छे लगने लगे। आप कहते हैं फलां तो इतने नेक हैं, उन पर मुश्किलें क्यों आती हैं, इसलिए कि अल्लाह उनको और अच्छा करना चाहता है, और अच्छा करना चाहता है। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को चुनता है, अपने लिए पूछते हैं क्या मैं वाकई जन्नत में जाना चाहती हूँ, क्या मेरे दिल में इसकी तमन्ना है। तो फिर एक दफ़ा मोहब्बत से तिलावत सुनिए इस आयत की, और कोई ना कोई कमिटमेंट करें अपने साथ कि मैंने इस जन्नत को पाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अल्लाह की मदद भी इंसानों को उसी वक्त आती है जब इंसान मुसीबतों को बर्दाश्त कर लें, और जब वो साबित कदम रहें और मुसीबतों के आगे खड़े हो जाएं कि अल्लाह हमने हर हाल में तेरे दीन पे कायम रहना है और तेरी उस जन्नत को पाने की तमन्ना करनी है। आइए तिलावत सुनते हैं इस एक आयत की।
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.